तो पहली किस्म क्या थी? आजमाइशें, हो गई बात। अब दूसरी क्या है? मसाइब का बतौरे सजा आना, इसको भी पढ़ लीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस से भी पता चलता है और कुरान से कि बहुत सारी मुसीबतें जो हम पे आती हैं वो किस वजह से आती है? हमारे गुनाहों के। इसकी पहली दलील नोट कर ले, सूरत शूरा आयत नंबर 30। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबीमा कसबत अईदीकुम वयाफू अन कसीर। और तुम्हें जो भी मुसीबत लाहिक होती है तो वो तुम्हारे हाथों की कमाई की वजह से होती है, और बहुत सारी चीजों से तो हम दरगुजर ही कर जाते हैं। कितना प्यारा अंदाज है इस आयत का अगर आप देखें। और सूरह शूरा वैसे ही बड़ी प्यारी है। पूरी सूरह शूरा का जो मेन थीम है वो है ही उम्मत मुस्लिमा की कानून साजी है। तो उसके बीच में अल्लाह ने ये कानून दे दिया कि लोगों, जो मुसीबतें तुम्हें पहुंचती हैं तुम्हारी पुरानी पिछली बुराइयों की वजह से होती हैं। और याफ़ुन कसीर क्या है? इसके ऊपर एक मुफसिर है शेख सादी, उनकी बहुत मारूफ तफसीर है, 4 जिल्दों में दारुस्सलाम ने भी छापी है, तफसीर सादी के नाम पे। तो वो उसमें लिखते हैं, अल्लाह ताला आगाह फरमाते हैं कि बंदों को इनके बदनों, मालों, औलादों और इनकी महबूब और अजीज चीजों में आने वाली हर मुसीबत इनके करतूतों की बिना पर होती है। बिला शुबा जिन बुरे आमाल से अल्लाह ताला दरगुजर फरमाते हैं वो इनसे कहीं ज्यादा हैं जिनके सबब वो सजा देते हैं, क्योंकि यकीनन अल्लाह ताला बंदों पर तो जुल्म नहीं करते लेकिन वो बंदे खुद अपनी जानों पे जुल्म करते हैं। अगर आप इस आयत पे गौर करें ना तो आपको इसमें 3 वार्निंग्स दिखेंगी, हाईलाइट कर लीजिए आयत के अंदर से ही बेशक। पहली चीज, वमा असाबकुम, और जो तुमको पहुंचती है। ये जो मा है ना, ये नाफिया है, नहीं के मानों में आता है अरबी जुबान में। फिर देखिए, मिम मुसीबतिन, कोई भी मुसीबत। मुसीबत का लफ्ज क्या है? नकरा। एक होता है कॉमन नाउन और एक होता है प्रॉपर नाउन। ये कॉमन नाउन है, यानी हर छोटी से छोटी मुसीबत ये मुराद है। तीसरा, मिन इस्तगराकिया। इस्तगराकिया कहते हैं जो सारी चीजों का अपने अंदर गर्क कर दे, डुबो दे, यानी कोई भी। क्या मतलब बनता है इसका? तुम्हें कोई भी मुसीबत नहीं पहुंचती मगर तुम्हारे अपने हाथों की कमाई की वजह से। क्या पता चला कि इस आयत का ताल्लुक गुनाहगार लोगों से है? आयत का ताल्लुक मुसलमान और दीगर गुनाहगार लोगों से है, क्योंकि जिनके गुनाह नहीं होते, जैसे अंबिया कराम, इन्हें भी मसाइब पहुंचते हैं। और पीछे हम हदीस पढ़ चुके हैं कि सबसे ज्यादा आजमाइश नबियों की, और उसके बाद फिर जिसका जितना ईमान ज्यादा होता है उतनी आजमाइश आती है। इसी तरह बच्चे, कभी बच्चों पे आजमाइश आ जाती है। अब वो क्या होता है? बच्चों के तो गुनाह है नहीं। मजनू, दीवाने, बावले, जिनकी सोच नहीं, उनका ताल्लुक पहले वाली मुसीबतों में है। इसके अलावा जो आप और हम आम लोग होते हैं, जो वाकई इंसान गलतियों का और गुनाहों का पैकर है, तो अमूमन जो हम पे मुसीबतें आती हैं ना, ये हमारे गुनाहों की वजह से आती हैं। अब मिसाल है कि आप किसी को देखें और उसको, मिसाल देती हूँ, मुसीबत हम किसको कहते हैं? बीमारी को कहते हैं ना। अब आप किसी को देखने गई तो उनकी कमर में दर्द है, और अगर आप जाके कह दे अल्लाह ताला आपके उस गुनाह को माफ करे जिसकी वजह से आपकी कमर में दर्द है, नाराज हो जाएंगी, कहेंगी हाँ हाँ मैंने क्या कर लिया अल्लाह का। लेकिन जरा देखिएगा, सलफ सालेहीन जो हमारे असलाफ थे, बुजुर्ग थे, वो तकलीफ आने पे क्या कहते थे? इसमें चंद मिसालें मौजूद हैं इधर। सबसे पहले अस्मा बिनते अबी बकर, हजरत आयशा की बहन थी, जब इनको सर दर्द होता तो अपना हाथ अपने सर पर रखती और फरमाती, इनके जुमले नोट कर लीजिए, बिजम्बी, मेरा गुना, वमा यग़फिरुहुल्लाहु ताला अक्सरु। हाईलाइट करना चाहे तो कर लीजिए। कहती हैं मेरे गुनाह की वजह से है, और जो अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा देते हैं वो तो बहुत ज्यादा है। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या पता चला? हजरत अस्मा के सर में जब दर्द होता था तो वो कहती थी ये मेरे गुनाहों की वजह से है, और बहुत सारे गुनाह तो अल्लाह ने माफ कर दिए। अच्छा, हम क्या कहते हैं? कभी आप किसी को सर दर्द तो नहीं हो रहा इस वक्त? आप कहेंगे ये बोलती जा रही है इसलिए सर दर्द हो रहा है, आज सुबह सुबह उठा के भेज दिया सर दर्द हो रहा है, चाय नहीं ना पी के आई इसलिए सर में दर्द हो रहा है, वो गर्मी लग गई है सर्दी हो गई है, ये मस्जिद वाले क्या हैं इन्होंने पता नहीं हमें, शायद मस्जिद में ठंड है सर दर्द हो गए, नहीं सोचेंगे तो ये एक लफ्ज नहीं हम बोलते। सब मिलके बोले बिजम भी, याद कर ले। आज के बाद आपका बच्चा रो रहा है ना, बिजम भी। आपके शोहर को आप पे गुस्सा आ रहा है, बिजम भी। आपकी बिजली, आपकी जो टैब है वो लीक करने लग गई, उस पर लिख लें बिजम भी। हर घर की टूटी फूटी चीज, हर छोटी बड़ी चीज, हर रिश्तेदार का आपसे नाराज होना भी जम्बी। कितना प्यारा कोड वर्ड है, ये मेरा गुना है, ये मेरे गुना की वजह से। और यकीन करें ये सोच बंदे की इस्लाह का दरवाजा खोलती है। हम कहते हैं ना बिजम्बी बाली, मेरे शोहर का गुना, और हमने तो अपने शोहर को कैश पे रखा हुआ है, हर चीज में आगे पेश करेंगे इनकी वजह से, ये इन्होंने मेरी मत। और कुछ ना समझ आए ना गरीब बंदे की कोई गलती, तो कहते आपने मेरी मत मार दी है, मैंने चीनी की जगह नमक डाल दिया, बेगम मुझे माफ कर सकती हो? अब वो मरने के बाद ही करूंगी है? वो कई कहते हैं ना मुझे कसूर नहीं अपना समझ आता, तो कहते कसूर तो वो हो गया था ऐसे 15 साल पहले, अब उसको भुगत रहे हैं। और अक्सर खवातीन तो यकीन करे बच्चे और मियाँ पटक से बोलती हैं, देर क्यों हो गई? मियाँ नहीं गए। जल्दी क्यों हो गया? ये हो गया, बच्चा रो पड़ा, मियाँ बच्चे। और माशाल्लाह जो ससुराल में रहते हैं तो फिक्र ना करें, बहुत सारी सासों के गुनाह भी बहुओं से माफ हो जाने हैं। वो सास नहीं चाहती, वो ससुराल नहीं चाहते, वो मेहमान आ जाते हैं, वीकेंड पे ये आ गए थे, भाई कोई बिजम्बी बोलना मुश्किल है? जरा पढ़े हाँ पढ़ाड़े की तरफ बिजम्बी, सारे तस्वीर करें जम्बी। अब एक नया वजीफा ईजाद करके जा रहे हैं हम, बिजम्बी बिजम्बी बिजम्बी। और सच्ची बात है, कल वाले दौर में देखे किसी ने ये वजीफा बना के फेसबुक पे एक मैसेज डाल देना है कि कोई तकलीफ आए तो बिजम्बी की तस्बीह 101 बार करो और फिर उसको पढ़ के फूंक लो। नहीं ख्याल आना तो अपने जम पे नहीं आना, अपने गुनाह पे नहीं आना। यकीन करें ये सोच बंदे का दिल ठंडा कर देती है कि मेरे पे कोई ज्यादती नहीं कर सकता, ये मेरे गुनाह हैं जो किसी को मेरे पे मुसल्लत करते हैं। फिर इसी तरह से मुर्रा हमदानी का नाम लिखा है इन्होंने, बयान करते हैं कि मैंने शुरैह की हथेली पर फोड़ा देखा। शुरैह एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं और नेक शख्स थे, तो उनके हाथ पे एक दाना निकल आया, जैसे एक फोड़ा कह लीजिए, समझते ही आप सारे फोड़े को, पिंपल भी नहीं कह लेंगे, यानी को जख्म कह लीजिए। तो मैंने अर्ज किया ए अबू उमैया ये क्या है? ये अबू उमैया जो था ना ये इनकी कुनियत थी, कहते हैं कि 80 हिजरी से पहले या बाद में फौत हुए और इनकी उम्र 100 साल 108 बरस या इससे ज्यादा थी और 70 साल तक ये काजी रहे थे। इनका नाम आते काजी शुरैह के नाम पे, यानी साहबी तो नहीं थे लेकिन बाद के बहरहाल ताबईन में से थे। तो किसी ने देखा कि इनके हाथ में एक जख्म हो गया, तो कहा ये क्या हुआ? अच्छा हम होते ना तो पूरी कहानी सुनाते, वो जम वहां से लग गया, वायरस फैल गया, फिर ये हो गया, फिर वो किया। इनका जवाब सुनिए, ये तुम्हारे हाथों की कमाई है और ज्यादा गुनाहों से तो वो दरगुजर ही फरमाते हैं। ये सूरह शूरा की आयत पढ़ते हैं, कहते हैं ये मेरे किसी गुनाह की सजा है और अल्लाह ने मेरे बड़े गुनाह माफ किए हुए, वरना ये एक दाना नहीं 10 दाने होते। कितनी पॉजिटिव सोच है, किसी बंदे से आपको गिला रहेगा इसके बाद दुनिया में? मैं सोचती हूँ अक्सर कि सच्चा ईमान और इखलास अंदर आता है ना, आपको दुनिया में कोई बंदा बुरा नहीं लगता। सारी गलतियां सारे कसूर मेरे हैं, भी जम्बी मैं खराब हूं, मेरे अंदर कमी है, साथी तो सारे बड़े प्यारे हैं। और ऑपोजिट पे ले ले, मैं बहुत अच्छा हूं बाकी सारे खराब है, मैं इतनी अच्छी इतने खराबों में फंस गई, तो ये नेगेटिव एटीट्यूड होता है। फिर इसी तरह एक तीसरी मिसाल इन्होंने दी है, इब्ने औन ने कहा बिलाशुबा जब मोहम्मद बिन सीरीन पर कर्ज चढ़ गया तो इसकी वजह से गमगीन हो गए। आप कहते हैं मोहम्मद बिन सीरीन कौन थे? ये बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, 110 हिजरी में फौत हुए थे और ख्वाबों की ताबीर में ये बहुत मारूफ है। इनकी किताब भी है इमाम मोहम्मद बिन सीरीन की ताबीर और रोया पे। तो जब इन पे कर्ज हुआ तो कहने लगे यकीनन मैं इस गम के सबब को पहचानता हूं, यानी ये मैं मकरूज क्यों हो गया हूं, ये मेरे 40 बरस पहले किए हुए गुनाह की वजह से है। बात समझ है? यानी आज कर्जे में आगे कोई सबब बना होगा तो आगे ना, कहते हैं ये मेरा 40 साल पुराना गुनाह है, अल्लाह ने इस कर्ज की सूरत में मेरे ऊपर मुसल्लत कर दिया। अल्लाह हमें भी सेल्फ एनालिसिस का ऐसा ही मौका दे, खुद इख्तसाबी करके देखिए, दुनिया में आप सबको अच्छा समझेंगे अपने सिवा। फिर इसी तरह से अबू सुलेमान दर्रानी से पूछा गया मा बालुल उकलाऊ अजालुल लौमु अमन असा इलैहिम, अक्लमंद लोग अपने साथ बुराई करने वालों को काबले मलामत क्यों नहीं गर्दानते? नोट करिए जुमला, ये हम सब के काम का है। कहते हैं कि जो अक्लमंद लोग हैं जब कोई उनके साथ बुराई करे, मिसाल है कोई कर दे, तो वो उनको मलामत क्यों नहीं करते? बात वाज़ है? आप अक्लमंद में नाम लिख के सोचिए, मसलन हमारे साथ कभी कोई क्या बुराई करता है, कोई रिश्तेदार हमारी बुराई करता है, कोई गीबत कर दी, किसी ने हमारे खिलाफ कोई बात कह दी, यही कुछ होती है ना बुराइयां। कोई हमारी गीबत कर दे या कुछ भी, तो क्यों नहीं आप उनको बुरा कहते? जवाब उनका बड़ा खूबसूरत है, लियन्नहुम अलिमु अन्नल्लाह ताला इन्नमा इब्तलाहुम बिज़ुनूबिहिम, क्योंकि बिलाशुबा वो जान चुके हैं कि दर हकीकत अल्लाह ताला ने इनके गुनाहों की वजह से इनको मुसीबत में डाल दिया है। बात समझ गए? तो जब मुझे पता है कि मेरा गुनाह, देखिए ना जाहरी सबब तो दिख रहा होता है, बस आपका बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा, जवान बच्चा है, माँ को तंग कर रहा है, आगे से बोल रहा है, अब जाहिर तो साफ दिख रहा है कि आपका बच्चा आपके आगे बोल रहा है, लेकिन अगर आप अलोकला में से ना, अगर आप अक्लमंद हैं, आप 25 साल पीछे जाएंगी, मैंने भी अपनी माँ को ऐसे सताया हुआ है, ये वो जो उस दिन मैंने माँ के साथ ऊंची बात की थी ना, आज मेरा बच्चा बोल रहा है, फौरन तौबा करेंगे, रब्बे रहम हुमा कमा रब्बे यानी सगीरा, उधर का मामला आप सीधा कर लें, देखिए आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। मान लीजिए ये होता है ऐसा बात, हत्ता के बहुत खूबसूरत हदीस है इसमें और भी, अगर मौका मिला तो आपके साथ शेयर करती रहूंगी। फरमाया कि किसी का जानवर दूध थोड़ा दे, या आप दूध लेने गए उससे और उसने लात मार दी, ये भी आपका कोई पुराना गुनाह, वरना एक जानवर कैसे आपके आगे अड़ी कर सकता है। तो जब हमारे छोटे या डिपेंडेंट्स या हमारे कोऑर्डिनेटर्स हमारी बात नहीं मानते या हमारे साथ ज्यादती करते हैं, ये पीछे का कोई खाता खुला होता है जो हमने पे नहीं किया। नॉर्वे में एक असूल है, मैं उससे ये बात वहां भी समझाती हूँ, आपको भी समझाती हूँ। बस आपने अपने घर का बिजली का बिल नहीं दिया, एक महीना नहीं दिया, दूसरे नहीं देंगे, पाकिस्तान में क्या होता है, बिजली काट देते हैं। नॉर्वे में पता क्या होता है, वो शुक्र करते हैं आपने बिजली का बिल नहीं दिया। वजह क्या है, शुरू में वो आपको एक रिमाइंडर भेज देंगे, और पहले अगर 100 करोन बिल था ना, तो उस पर 50 लगाकर वो खुशी खुशी 150 भेजेंगे, और वो दुआएं दिल में कर रहे होते हैं, अल्लाह करे इस दफा भी ना पे करें। अगले महीने वो 150 के ऊपर फिर लगा कर इंटरेस्ट लगाते हैं सूद, तो 300 करते हैं। एक आध रिमाइंडर के बाद वो क्या करते हैं कि आपकी बिजली तो खुली आ रही है, आप कहते हैं मजा जी बिल भी नहीं आ रहा और बिजली भी है, लेकिन वो आपका नंबर एक वो इनखासो बोलते हैं, वहाँ एक पूरा इदारा बना हुआ है कि जो लोग अपनी पेमेंट्स नहीं देते ना कंपनियों को, कंपनियां उस कंपनी को वो केस दे देती हैं, जैसे वकील हायर करना है। अब वो जो इनखासो वालों ने आपसे लेना है ना, वो अल्लाह की बना है, वो 100 का बिल बाद दफा 1000 पे भी बच जाएगा, वो जमा करते रहते हैं, और जिस दिन फिर आपने वो पे करना है, वो आपसे एक से एक लेगा। बस इस बात को यहां समझ लें, हम अल्लाह के बिल नहीं पे करते, हम अल्लाह के हक नहीं देते, अल्लाह हमारे केस हमारे बच्चों, हमारे शोहरों, हमारे ससुरालों, हमारे कोऑर्डिनेटर्स और हमारे हुक्मरानों और दुनिया के सुपर पावर्स के हाथ में दे देता है, जाओ तुम निपटो इनसे। अल्लाह तो अच्छा है, उसने तो एक का एक ही लेना था, फिर दुनिया वाले हमारी चीजें निकलवा के हमारी तौबा कराते हैं। हमेशा अल्लाह से अपना मामला सीधा कर लें, मेन स्विच ठीक कर लें, छोटे सारे स्विच खुद ही ठीक हो जाएंगे। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि जो शौहर बीवी का झगड़ा होता है ना, वो असल में अल्लाह और बंदे का झगड़ा होता है, उसका रूप आप बदल गया एक शौहर की सूरत में। आपने अल्लाह का हक नहीं दिया, कमी की, गुनाह किया, आपने नमाज नहीं पढ़ी। मसलन बात औरतें कहती हैं हमारे हस्बैंड हमें क्लासेस में नहीं आने देते, पाबंदी लगाते हैं, तो मैं उनसे पूछती हूँ अच्छा नमाज पढ़ी थी, नमाजों का क्या हाल है आपकी? कहती छुट्टी जाती हैं, पूरी तो नहीं होती, छूट जाती, लेट हो जाती। मैंने कहा बस जाइए आप वो ठीक कीजिए, आपका शौहर आपको स्कूल आने देगा। ये अल्लाह ने आपके शौहर को काम दिया है कि ये मेरा हक नहीं दे रही, नमाज नहीं पढ़ती, आप जरा इसको क्लास में जाने से रोक लें। समझ आई बात आपको? एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, फिर इंशाल्लाह बात समझ आएगी। आप मिसाल है कि किसी शहर में यहाँ से कभी कभी जाती हैं, वहां से किसी आपके जानने वाले ने आपसे 1000 यूरो कर्ज ले लिया, आपको कहा कि 1 महीने बाद दे देंगे, आप कहते हैं कोई बात नहीं दे देंगे, आपने उनको दिया, महीने बाद पूछा टालने लगे, आपने कहा नहीं दे सकते, बात थोड़ी आगे बढ़ी, 2-3 महीनों पे चली गई, आपको समझ आता है इन्होंने देने नहीं है। आप एक दिन यहां से पहुंची, मैं आ रही हूं, आप उनके शहर में पहुंच गई उनको लेने देने के लिए, पता चला आपके आने का सुन के वो भाग गए, सामना नहीं किया, दरवाजा नहीं खोला। अब आप रोज तो नहीं जाएंगी ना शहर में, लेकिन आपको याद आता है कि उसी शहर में आपकी एक और भी दोस्त रहती हैं, तो आप उन्हें कहेंगी जरा आप सुबह आते जाते या किसी वक्त उनको याद दिला दें और मेरे पैसे जब वो दें तो मुझे दे दें। आप क्या हुआ कि वो उसके लोकल शहर का बंदा उसके सर पे आपने मसलत कर दिया, आप पीछे हो गए वो आगे आ गया, क्योंकि आप नहीं ले सकते अब वो लेगा। इतनी बात समझ आ गई है? आप अल्लाह के लिए तो कोई मिसाल नहीं, ये हमारे लिए मुश्किल है दूसरे शहर जाना लाना देना, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। बिल्कुल यही मामला हमारा अल्लाह के साथ होता है, हमने अल्लाह का कुछ हक देना होता है, हम नहीं देते, तो अल्लाह ताला हमारे साथ रहने वाले लोगों में से किसी को हम पे मुसल्लत करता है, तुम मेरा ये हक लेके दो। بس سیدھی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے کہ جب بھی کوئی گناہ اپنا کریں اس وقت دیکھیں۔ اسی موضوع کی ایک اور آیت قرآن میں جو ہے وہ سورۃ روم آیت 41 ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا تاکہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ انہیں ان کے کچھ کرتوتوں کا مزہ چکھائے، شاید کہ وہ باز آ جائے۔ یہ بڑی معروف آیت ہے سورۃ روم کی۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو ظہر الفساد فی البر والبحر ہے اس میں کیا کچھ آتا ہے، قحط سالی ہے، موتیں ہیں، آگ لگ جانا، غرق ہو جانا، برکتوں کا ختم ہونا، نقصان، گمراہی، اور بما کسبت ایدی الناس میں کیا کچھ آ رہا ہے، نافرمانیوں کی نحوست ان کے کرتوتوں کے سبب۔ مقصد کیا ہے اس میں اگر آپ حصہ ہائی لائٹ کریں، لعلہم یرجعون، اللہ مشکلوں میں اس لیے ڈالتا ہے کہ ہم اس کی طرف پلٹ آئیں اور اس برائی کو چھوڑ دیں۔ اور شیخ سعدی کہتے ہیں ظاہرہ کا معنی ہے کھل کر سامنے آ گیا۔ تو خلاصہ کیا نکلا آج کی پوری نشست کا؟ خلاصہ الحمدللہ ہم نے اپنا آج کا ٹارگٹ پورا کیا۔ میں چند جملوں میں آج کی پوری بات کو سم اپ کر دیتی ہوں۔ آج ہم نے سب سے پہلے مصیبتوں کی حقیقت دیکھی۔ مصیبت تو آئے گی، پکی بات آئے گی، ادھر سے نہیں آئے گی تو ادھر سے آ جائے گی، ادھر سے نہیں تو ادھر سے آ جائے گی، لیکن آئے گی۔ پھر دوسری چیز ہم نے دیکھی کہ مصیبتوں کے آنے کے عموماً دو بڑے سبب ہیں، ٹو فیکٹرز ہیں، ٹو ریزنز ہیں۔ پہلا سبب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائش چاہتا ہے بندوں کی، امتحان ہوتا ہے، کھرے کھوٹے کو الگ کرنا ہوتا ہے۔ اس قسم کی آزمائشیں عموماً انبیاء کرام اور نیک لوگوں پہ آتی ہیں، اور امت مسلمہ پہ جب ایسی کوئی اجتماعی آزمائشیں آئیں تو چھانٹ مقصد ہوتا ہے کون ان فتنوں میں اور زیادہ اپنے دین پہ جمتا ہے اور کون دین کا لبادہ اتار دیتا ہے۔ اور دوسری قسم جو ہم پہ مصیبتوں کی وجہ کی آتی ہے وہ کیا ہے، ہمارا کوئی پرانا گناہ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہم پہ مسلط کرتے ہیں۔ اس سے بچنے کا علاج کیا ہے، اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو درست کر لیا جائے اور معافی مانگے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتے ہیں۔ کل کا ہمارا ٹاپک بہت اہم ہے، بہت خوبصورت ہے۔ آج الحمدللہ اللہ نے ہماری بات کا پورا کروایا۔ اگلا جو ٹاپک ہے اس میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ مصیبتوں کی آمد کے اسباب کیا ہیں۔ اسباب سمجھ رہے ہیں، یعنی ریزنز، کیونکہ آج اسباب کے پر بات ہے۔ اب یہ کہ مصیبتیں آنے سے پہلے کیا کام کریں، وہی بات جو شروع میں آپ کو بتایا ہے کہ ہاسپٹل اور ایمبولینس بنانے کی بجائے اس راستے کو ہی بند کر لیں جہاں سے گرنا ہے۔ تو کل کا جو ہمارا ٹاپک ہے ہم 10 چیزیں پڑھیں گے بہت ڈیٹیل کے ساتھ کہ مصیبتوں کے آنے سے پہلے کیا کام کر لیں کہ مصیبتیں آئیں نہ۔ یہ بالکل وہی بات ہے کہ کھڑکیاں پہلے ہی بند کر لو تاکہ اندر مٹی نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ وہ ہمیں اس سے فائدہ دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔